WMO की जो रिपोर्ट आई है कि 2019 में अब तक का दूसरा सबसे गर्म रहा है साल, तो इसमें क्या कहा गया और पहले से क्या अलग है?
देखिए, ये रिपोर्ट जो है ये एक लंबे टाइम फ्रेम को लेती है ऑफ कोर्स, और एक बहुत छोटे टाइम फ्रेम को भी लेती है। एक लंबा टाइम फ्रेम ये है कि ये पूरा जो डिकेड है, जो पूरे 10 साल का जो पीरियड है, ये उसका भी एक एवरेज लेती है, प्लस साल में ये भी लेती है साथ में कि इस टाइम पे जो 2019 में जो टेम्परेचर है ये प्री इंडस्ट्रियल एरा के, जो भी जब औद्योगिकरण हुआ था उसके पहले का जो रिकॉर्डेड जो टेम्परेचर है उससे कितना अलग है। इस रिपोर्ट की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस रिपोर्ट की टाइमिंग बहुत सही है। टाइमिंग इसलिए सही है क्योंकि अभी अभी हमारा एक काफ़ी बड़ा सम्मेलन जो हुआ स्पेन में, मैड्रिड में, जिसको हम कॉप के नाम से जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मेजर जो समझौता होना था अभी, जो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसका इम्प्लीमेंटेशन अभी 2020 से स्टार्ट होने वाला है, तो ये उम्मीद थी कि इस वाले लास्ट कॉप में जो है इसका समझौता हो जाएगा, और इसका समझौता नहीं हुआ है। और जब ये रिपोर्ट आई है WMO की, तो ये एक बहुत बड़ा और एक बहुत बड़ा अलार्म है सबके लिए कि आप एक तरफ तो समझौता नहीं कर रहे हो और दूसरी तरफ देखो पूरे पूरे अर्थ की हालत क्या होती चली जा रही है। तो ये एक अर्जेंसी भी दिखाता है कि आप जो नेक्स्ट जो कॉप होने वाला है ये ग्लासगो यूके में होने वाला है दिसंबर में, तो अगर आपने अभी भी समझौता नहीं किया तो शायद फिर इतनी देर हो चुकी होगी कि हम जो एक इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, हम लगभग उस तक पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम वापस नहीं आ पाएंगे उसके बाद।
तो अभी कार्बन उत्सर्जन को लेके अभी क्या हालात हैं?
अभी हालात देखिए क्या है कि सारे देशों ने, ज़्यादातर देशों ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में किया था। उस पेरिस एग्रीमेंट का जो कोर था, वो कोर जो ऑब्जेक्टिव था, उस कोर ऑब्जेक्टिव में ये कहा गया था कि सारे कंट्रीज़ मिल करके ये कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर जो राइज है वो 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो, और ये भी कोशिश करेंगे कि हम 1.5 डिग्री तक ही रोक दें प्री इंडस्ट्रियल एरा से। लेकिन जो तमाम तरह की जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी एक यूनेप की भी एक रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, जो बात कर दी है कि कितना एमिशन गैप है। अभी जो एमिशन गैप है हमारा, जो पूरे ग्लोबल अगर आप एमिशन गैप देखेंगे, तो उस केस में ये कहा गया है कि हम 3 से 5 डिग्री तक हम बढ़ने वाले हैं अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो। तो उस पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो है उससे उसके तहत कंट्रीज ने अपने एक NDC गोल्स होते हैं जो दिए हैं, जो बेसिकली ये कहता है कि हर कंट्री अपनी तरफ से क्या करेगा क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। और ये कहा जा रहा है कि जो NDC गोल्स दिए गए हैं आज के टाइम पर, वो NDC गोल्स जो है वो पर्याप्त नहीं है, वो हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसका हमको एम्बिशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जितना कुछ कहा जा रहा है उससे हम क्लाइमेट चेंज को रोक नहीं पाएंगे। और अगर हम इसी गोल के साथ में चलते हैं, जो भी NDCs जो सारे कंट्रीज ने सबमिट किया है, तो हम शायद देख रहे हैं 3 to 5 degrees, 3 से 5 डिग्री का टेम्परेचर राइज, जो कि बहुत बड़ा डिवास्टेशन होने वाला है। शायद एक कॉमन आदमी के लिए 3 डिग्री 2 डिग्री बहुत मैटर नहीं करता है, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हुए देखते हैं 10 डिग्री से लेकर 45 डिग्री, तो कोई भी ये सोच सकता है कि 3 डिग्री तो कुछ भी नहीं है। लेकिन 3 डिग्री में आपके जितने भी मेजर एग्रीकल्चर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। 1 डिग्री का टेम्परेचर का बढ़ना या किसी एक साल का गर्म होना सिर्फ एक चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। आपकी कृषि को इफ़ेक्ट करता है, आपके यहाँ जिस तरह की बीमारियाँ होती हैं उसको इफ़ेक्ट करता है, आपके यहाँ बाढ़ जैसी स्थिति बना देता है। तो शायद इसको देख करके बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन लोगों ने इसको अभी तक डिप्लोमेटिक इशू देखा है, उसको शायद एक एनवायरमेंटल इशू की तरह देखेंगे।
तो अब हम इसको देखते हुए किस तरह के समाधान की उम्मीद कर रहे हैं? UN किस तरह की कोशिशों में लगा है? क्या क्या प्रयास चल रहे हैं?
देखिए, UN तो काफ़ी कोशिश कर रहा है, क्योंकि UN की अपनी एक बॉडी है, एक कन्वेंशन है जिसको हम UNFCCC बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वो एक UN ने बना रखा है जिसके तहत सारे देश आते हैं, मोस्टली सारे देश आते हैं, कुछ एक दो देश छोड़ करके। UN ने लास्ट सितंबर में भी एक काफ़ी बड़ा एक सबमिट किया था जिसमें सारे कंट्रीज़ को बुलाया था, और उसमें यही बोला गया था कि आपने जो अपने जो गोल्स दिए हैं एमिशंस कम करने के, उस गोल को आप थोड़ा और बढ़ाइए, मतलब अभी जो आपने दिया है वो पर्याप्त नहीं है, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। तो यूएन एक तरफ से तो कन्वेंशन की तरह से भी ट्राई कर रहा है, दूसरा एक डिप्लोमेटिक चैनल भी यूएन यूज कर रहा है जिसमें वो कोशिश ये कर रहा है कि कंट्रीज को वो फ्रेमवर्क कन्वेंशन के बाहर भी समझा सके कि आपको और भी ज़्यादा चीज़ों का करने की ज़रूरत है। और यूएन की अपनी एजेंसीज हैं जो इस पर काफ़ी काम कर रही हैं, जो मंत्रालय के साथ में, जैसे अगर हम इंडिया में देखेंगे तो मंत्रालय के साथ में डायरेक्टली काम कर रही हैं, और इससे फ़र्क पड़ा है। लास्ट अगर हम पिछले 10 सालों में देखें तो 10 साल में एक बहुत ही, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, बहुत ही क्लोज डोर डिस्कशन होता था, अब वो डिस्कशन हर चीज़ में होने लगा है। अब हर एजेंसी, हर एक बच्चा भी बात करता है क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो जागरूकता तो काफी बड़ी है इससे, यूएन ने जितना कुछ भी किया है यहाँ पे उससे जागरूकता तो काफी बड़ी है।
लेकिन देखा जाए तो फॉसिल फ्यूल्स के प्रयोग में कुछ बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है, तो रिन्यूएबल्स की तरफ देश बढ़े ज्यादा से ज्यादा, उसके लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि देश रिन्यूएबल्स को अपनाए?
काफी सारे तरीके हैं उस पर देखा जाए तो। उसमें तो एक तो सबसे बड़ा रोल है प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर, अगर आपने पहले सुना होगा, एक सोलर मिशन इंडिया का हुआ करता है जिसमें इंडिया ने अपना एक टारगेट दिया हुआ है कि, वैसे ही और भी कंट्रीज ने अपना टारगेट दिया हुआ है कि हम इतना सोलर एनर्जी जो है हम लगाएंगे इस साल तक। तो सारे कंट्रीज ने, क्योंकि वो दिया हुआ है और सारे कंट्रीज प्राइवेट सेक्टर को बहुत इंगेज कर रहे हैं इसमें। जो सोलर पहले, जैसे हम अपने घर में जो बिजली यूज़ करते हैं वो हम यूनिट के बेसिस पे यूज़ करते हैं कि हमने 100 यूनिट खर्च किया तो हमें इतना पैसा देना पड़ेगा, उसी तरीके से सोलर का जो पहले जो जनरेशन का जो पर यूनिट जो कॉस्ट हुआ करता था, आज से 15 साल पहले वो करीब 20-22 रुपये हुआ करता था, जो कि आज घट करके बहुत कम में भी आ गया है, और कम से कम इतना भी हो चुका है कि अब कहीं पे तो 2 रुपये 20 पैसे, 2 रुपये 40 पैसे पर यूनिट आ गया है। ये सिर्फ मुमकिन हो पाया है क्योंकि हमने इसको बहुत ही लार्ज स्केल में करना शुरू किया है। तो इससे प्राइवेट सेक्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बनी है, एक मौका मिला है उनको कि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें और इस कॉस्ट को और नीचे लेकर के आए। कुछ कंट्रीज, कुछ देश तो ऐसे हैं जिन लोगों ने यह भी करके दिखा दिया कि पूरे ही एक शहर को पूरे दिन के लिए रिन्यूएबल्स पे चला दिया और कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी उन लोगों ने यूज नहीं की। तो रिन्यूएबल्स का बहुत पोटेंशियल है, स्पेशली सोलर का बहुत पोटेंशियल है। साउथ एशियन कंट्रीज में अगर देखें तो सोलर का बहुत पोटेंशियल है, और आगे चल करके रिन्यूएबल्स जो है वो अब रिप्लेस करेगा फॉसिल फ्यूल को, ये तो तय हो गया है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल किसी भी देश के पास बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। हर देश के पास देखेंगे, किसी के पास 50 साल 60 साल, मैक्सिमम 100-150 साल तक के लिए है। तो और कोई भी जरिया नहीं है जिससे आप जो एनर्जी का सोर्स आप पा सके सिवाय रिन्यूएबल्स के आगे चलते।